भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 18वें और हो सका तो 19वें अध्याय पर भी आज चर्चा करेंगे। 18वें अध्याय का शीर्षक है बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का वध। इसके दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया श्लोक को दोहराइए। ब्रजे विक्रीडितोरेवम् गोपाल छद्ममायया ग्रीष्मो नाम तुर्भवत् अति प्रेयाञ्छरीरिणाम् व्रजे विक्रीटर विक्रीडितोरेवम् गोपाल छद्ममायया ग्रीष्मो नाम ऋतुर्भवत् अति प्रेयाञ्छरीरिणा व्रजे विक्रीटर विक्रीडतोरेवम् गोपाल छद्ममायया ग्रीष्मो नाम ऋतुर्भवत् अति प्रेयाञ्छरीरिणा। आप में से कोई दोहराए। व्रजे विक्रीडतोरेवम्
गोपाल
ब्रजे वृंदावन में विक्रीडतो दोनों के खेलते हुए एवं इस प्रकार गोपाल ग्वाल बालों का छद्म वेश बनाकर माया द्वारा ग्रीष्म गर्मी नामक ऋतु अभवत् आ गई नहीं अति प्रेयान अत्यधिक अनुकूल शरीरिणाम देहधारियों के लिए। अनुवाद इसका इस प्रकार से है, जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य ग्वाल बालों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे तो शनै शनै ग्रीष्म ऋतु आ गई। यह ऋतु देहधारियों को अधिक सुहावनी नहीं लगती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण बुक में पहले भाग में इसकी टीका इस प्रकार की है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु का अधिक स्वागत नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, किंतु वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था क्योंकि ग्रीष्म वसंत के समान लग रही थी। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे आप सभी एक साथ और थोड़ा जोर से बोलिएगा।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णावरिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर।
हरे कृष्ण। तो बलराम जी के द्वारा प्रलम्बासुर का वध ये अध्याय है 18वां अध्याय यहाँ पर। और इस अध्याय में प्रारंभ के कुछ श्लोकों में जैसे हमने दूसरा श्लोक पढ़ा तो प्रारंभ के करीब 7 श्लोकों में वृंदावन का वर्णन है कि कैसे वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई। अब इस अध्याय में ग्रीष्म ऋतु का अगले अध्याय में भी थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन है और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करेंगे और फिर वेणु गीत गोपियों का वर्णन। बहुत सुंदर अध्याय सब प्रारंभ होंगे, सारे ही अध्याय सुंदर हैं। तो प्रलम्बासुर का वध करना है तो पहले कुछ श्लोकों में 7 श्लोकों में वृंदावन का वर्णन किया गया है, 8 से 16 श्लोक में कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ बहुत सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं या खेल खेल रहे हैं इसका वर्णन है। और फिर आगे 17वें श्लोक से अध्याय के अंत तक अर्थात 32वें श्लोक तक प्रलम्बासुर के वध का वर्णन है। तो ऐसे ही अध्याय बटा हुआ है और शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के वर्णन से कि वृंदावन में इनको बोलो थोड़ा ऊपर देखा करें, हमेशा नीचे मत देखा करो, कभी कुछ कहना होगा तो कह नहीं पाएंगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखो। सो आप लोग भी थोड़ा आंखें खुली रखिएगा। हमें पता है आप लोग जैसे ही कृष्ण का नाम सुनते हैं बड़ा मधुर होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी आंखें खोलकर भी मधुरता का अनुभव करना चाहिए। तो वृंदावन यहाँ पर अभी बहुत सुंदर वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु आई जैसे हमने अभी अध्याय में पढ़ा। तो ग्रीष्म ऋतु हालांकि प्रभुपाद जैसे लिखते हैं कि बहुत कष्ट देती है और हम सबको अनुभव है, बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कष्ट होता है। अभी प्रारंभ हो गया है कष्ट होना यहाँ पर और हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ें निकल रही हैं, कूलर निकल रहे हैं, दरवाजे खुले हो रहे हैं, सब हो रहा है और अभी तो और बढ़ेगा। तो ग्रीष्म ऋतु आनंद नहीं देती, लेकिन वृंदावन में जब कृष्ण थे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत ऋतु का अनुभव होता था, बहुत आनंद आता था वसंत ऋतु की तरह। बहुत अच्छे झरने हालांकि देखिए ग्रीष्म ऋतु में तो पानी सूख जाता है, लेकिन उस समय बड़े झरने बहते थे और उन झरनों के बहने से जब झरने नीचे गिरते थे तो गिरने के बाद जो ऊपर जल उड़ता था उससे सारे जो वृक्ष थे वो हमेशा गीले हो जाते थे। हमें पता नहीं आप लोगों ने कभी बहुत बड़ा झरना देखा है या नहीं। हम एक बार गए थे देखने के लिए, अफ्रीका में एक है विक्टोरिया फॉल्स, बहुत बड़ा है, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल सब जो है वो विक्टोरिया फॉल्स है। तो उसमें ऐसा है कि जब हम जा रहे थे तो अंदर जाने वाले थे देखने, तो हमें कहा गया कि आप रेनकोट पहनेंगे। हमने कहा रेनकोट की क्या, हम तो थोड़ी नहाने जा रहे हैं वहाँ पर और पानी में नीचे थोड़ी खड़े होंगे, हम तो ऊपर से देखेंगे। तो खैर हमने नहीं लिया, लेकिन जब गए तो पता चला क्यों पूछा था, क्योंकि वो पानी इतनी जोर से नीचे गिरता है और गिरने के बाद जब ऊपर आता है, मतलब समझ लीजिए कि नीचे चला जाता है 400-500 फीट गिरता होगा, फिर उसके बाद जो ऊपर उठता है तो जितने लोग वहाँ खड़े होते हैं उन सबको ऐसे लगता है कि बारिश आ रही है। हम लोगों को पूरा पूरा भीग गए थे, तो ऐसे जस्ट खड़े रहकर देखने में। तो ऐसे ही वृंदावन में वो गिरते थे और जल का जो ऊपर आता था तो सारे वृक्ष और बहुत हरी हरी घास होती थी। ज़्यादातर हम देखते हैं हरी घास ये होती है केवल वर्षा ऋतु में, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन में हरी हरी घास थी। और जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, मोर साधारणतः ग्रीष्म ऋतु में नृत्य नहीं करते, जब वर्षा होती है तब करते हैं, लेकिन वो भी उस समय कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर वर्णन वहाँ किया गया। और जो ग्वाल बाल जब जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने आप को सजा लेते थे पत्तों से फूलों से, इतना सुंदर लगता था दृश्य पूरा। तो ऐसे वे लोग सब जाते थे और किस तरह से लीलाएं करते थे, तो खेल करते थे, या कभी कभी ऐसा होता था कि वे लोग एक साथ नाचते थे, सब नृत्य करने लगते थे, या कभी कभी एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते थे। और फिर कभी ऐसा होता था कि सब लोग कृष्ण को कहते थे अच्छा आज कुछ गाओ, तो कृष्ण गाते थे। अब आप सोचिए अगर कृष्ण गाएंगे तो कैसा होगा, हमारी तरह तो नहीं होगा, स्वाभाविक है। तो कृष्ण गाते थे बड़ा, लेकिन बच्चे क्या कहते थे, बहुत अच्छा आज तुमने अच्छा गाया, कृष्ण को ऐसा कहते थे। और फिर कभी कभी कृष्ण बलराम उनको कहते थे अच्छा अब तुम गाओ, तो वो लोग गाते थे, सब बैठ जाते थे जैसे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, और वो बच्चा गाता था जो भी ग्वाल बाल, उसके बाद कृष्ण बोलते थे आज तुमने बहुत अच्छा, कल से अच्छा गाया, आज तुमने बहुत अच्छा गाया। तो ऐसे आपस में खेल करते रहते थे वे लोग, और कभी कभी बहुत सारे और खेल करते थे। हम लोग देखते हैं बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं, ये सब कृष्ण के से परंपरा से आ रहा है, कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बच्चे पीछे से आकर आंखें बंद कर देते हैं, बताओ कौन है ना। तो कृष्ण और ग्वाल बाल ऐसे खेला करते थे कि एक ग्वाल बाल पीछे चला जाता था वो आंख बंद कर देता था, तो अभी खाली हाथों को छूकर बताना है कि कौन है। अगर बता दिया तो सब बहुत अच्छे ताली बजाते थे, और नहीं बता पाए गलत बताया तो सब हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। तो हम लोग देखते हैं बच्चे खेल खेलते हैं, तो ये सब परंपरा से ही आ रहा है जो भी है। इसीलिए कृष्ण ने भगवद गीता में कहा अहम सर्वस्य प्रभव, जो कुछ आ रहा है मुझसे आ रहा है, जो खेल भी खेल रहे हो वो भी उन्हीं से आ रहा है। तो ऐसे खेला करते थे। तो एक समय अब जब सारे ग्वाल बाल थे वहां, तो वहां पर एक असुर आया प्रलंबासुर, और उसने क्या किया, एक बच्चे का एक ग्वाल बाल का रूप ले लिया। उसने सोचा मैं इनमें मिल जाऊंगा और फिर जब अवसर मिलेगा कृष्ण बलराम को मार दूंगा। तो उसने उस बच्चे का रूप लिया जो उस दिन नहीं आया था, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नया आता तो सब कहते भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए। तो उसने बहुत ध्यान रख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने देखा कि आज ये बच्चा नहीं आया, उसकी माँ ने रोक लिया है किसी काम से, तो उसने उस बच्चे का रूप ले लिया और उस बच्चे का रूप लेकर वो उनमें मिल गया और सब कर रहा है, गायें चरा रहा है, खेल रहा है। कृष्ण जान गए कि कौन है, तो कृष्ण ने सोचा कि इसको तो मारना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा आज हम एक अलग खेल खेलेंगे। तो सब लोग आ गए, क्या क्या कौन सा खेल खेलेंगे आज। उन्होंने कहा आज हम दो दल बनाएंगे, एक हमारा कृष्ण का और एक बलराम जी का। तो दो दल बन गए, सब जो कृष्ण को चाहते थे वो कृष्ण के ग्रुप में आ गए दल में, और जो बलराम जी के साथी थे वो बलराम जी के दल में चले गए। मतलब दो दल बनेंगे और एक दूसरे से हम जो भी है थोड़ा बहुत खेल खेलेंगे, लड़ेंगे दो दो के ग्रुप में, दो दो में, और जो हार जाएंगे उनको दूसरे को अपने कंधे पर उठाकर चलना होगा भांडेरवन तक, क्योंकि उस समय वो लोग भांडेरवन की ओर जा रहे थे। भांडेरवन में बहुत बड़ा वृक्ष है तो उसके नीचे जाकर बैठते थे। अब तो वो वृक्ष बहुत छोटा है, कहते हैं उस समय में करीब एक एकड़ में पूरा फैला हुआ था भांडेरवन का वृक्ष, भांडेरवट। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा, तो सबने कर लिया, तो ऐसे सबके खेल होने लगे। खेलते खेलते अपनी गायों को चराते हुए आगे भी चल रहे थे भांडेरवन की ओर। तो ऐसे हुआ कि जो कृष्ण के दल में थे, और प्रलंबासुर कृष्ण के दल में आया क्योंकि उसने सोचा कि मैं बलराम जी को पहले मारूंगा, ये कृष्ण बड़ा खतरनाक है, मैंने सुना है बहुत सारों को मार चुका है, इसलिए पहले बलराम को मारूंगा। तो वो फिर वहां पर गए, उन्होंने कृष्ण के दल में वो आ गए। फिर हुआ युद्ध, और कृष्ण के जो दल वाले थे वो सब हार गए, और बलराम जी के जो दल वाले थे वो जीते। तो अब कृष्ण के दल के लोगों को बलराम जी के दल के लोगों को उठाना था। कृष्ण ने अपने कंधों पर श्रीदामा को उठाया, हार चुके हैं क्या करें, उठाना पड़ेगा। तो कभी कभी मन में आता है भगवान कैसे हार गए, और अगर भगवान हार जाए तो कैसे भगवान है ये, भगवान को तो हारना नहीं चाहिए। तो भगवान ये लीला में अपने ग्वाल बालों को आनंद देने के लिए ऐसा करते हैं। तो कृष्ण ने अपने कंधों पर श्रीदामा को उठा लिया। भद्रसेन जो कृष्ण के दल में थे वो भी हार गए, तो उन्होंने अपने कंधों पर वृषभ नाम के बालक को उठा लिया, और प्रलंबासुर इसने बलराम जी को उठाया, मैं बलराम जी को उठाऊंगा। तो ऐसे सब चले जा रहे हैं, जा रहे हैं भांडेरवन की ओर आनंद लेते हुए। और धीरे धीरे ये जो प्रलंबासुर था ये बड़ी तेजी से चलने लगा, और जिस स्थान पर रुकना था वहां रुका नहीं, वहां से चले जा रहा है बलराम जी। उसने सोचा कि मैं कृष्ण से दूर ले जाऊं तब मारूं, कहीं कृष्ण मुझे ना मार दे पहले। तो बड़ी दूर ले जा रहे हैं, तो बलराम जी सोचने लगे, अरे क्या हुआ ये इतना तेज क्यों भाग रहा है, इसको क्या हो गया है। तो फिर बलराम जी को समझ में आया। तो ऐसा वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू में कि बलराम जी ने देखा हो तो बलराम जी कृष्ण को पुकारने लगे, कह रहे अरे कृष्ण देखो ये क्या, ये लगता है कोई असुर आ गया है और ये लेकर मुझे जा रहा है, भगा रहा है, मैं क्या करूं, बलराम जी पूछ रहे। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे आप इतने भ्रम में क्यों आ रहे हैं, भूल गए कि अपनी शक्ति, मार दीजिए उसको, खत्म कीजिए उसको। बलराम ने कहा मारने में तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये तो बालक है ना, गोप बालक, मारू कैसे उसको, गोप बालक को कैसे मार दूं, ग्वाल बाल है। तो कृष्ण कहते मैंने नहीं मारा था, मैंने स्त्री को मारा ना, मैंने भी वत्स को मारा ना, बछड़े को, फिर आपको मारने में क्या तकलीफ है। बलराम जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, तुमने भी मारा है, चलो ठीक है फिर मैं भी मार देता हूं। तो बलराम जी को ये चिंता थी कि कैसे मारूं इसको, ये गोपाल है, इसके रूप में आया है। तो कृष्ण ने बताया चिंता नहीं कीजिए, मैंने भी मारा हुआ, पूतना को मारा, वत्सासुर को मारा है, आप भी मार सकते हैं। तो बलराम जी ने फिर जब वो बहुत दूर ले गया, बड़ी तेजी से भागने लगा, और उसने फिर अपना मूल रूप प्रकट कर दिया। जय श्री गौर नारायण दयाल नेताई की जय। तो उसने अपना मूल रूप प्रकट कर दिया, बहुत विशाल बलराम जी को लेकर भाग रहा है। ऐसा वर्णन है कि उसका जो शरीर था मानो आकाश को छू रहा हो। तो जब बलराम जी ने ये देखा तो उन्होंने एक घूंसा उसके सिर पे मारा, ऐसे वर्णन, सर फट गया उसका दो भाग में, और वो गिर पड़ा नीचे, मर गया। ऐसे बलराम जी ने उसको मार दिया। तो ये प्रलंबासुर का वध हुआ। ये प्रलंबासुर दरअसल अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, देवलोकों में रहता था, गंधर्व था, इसका नाम था विजय। एक समय ये उस स्थान पर आया जहां पर कुबेर ने बहुत सारे पुष्पों को खिला रखा था, और कुबेर ने वो पुष्प खिलाए थे क्योंकि उससे वो शिव जी की पूजा करना चाहता था। तो कुबेर ने देखा कि कभी कभी कम हो जाते हैं वहां पर, जो पुष्प हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक श्राप दे दिया कि अगर कोई भी देवता या मनुष्य इस स्थान से फूलों को लेगा तो वो राक्षस बन जाएगा, असुर हो जाएगा। अब ये पता नहीं था विजय गंधर्व को, तो ये आए वहां उस स्थान पर, आए देखा बहुत सुंदर पुष्प लगे उनको, तो उन्होंने थोड़े से ले लिए, और जैसे ही लिए तो श्राप के कारण वे असुर हो गए। उसके बाद वो कुबेर के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की कि क्षमा याचना की कि हमें पता नहीं था, हमने अपराध कर दिया। तो फिर उस समय कुबेर ने कहा चिंता नहीं करो, आगे चलकर ब्रज में भांडिर वन में बलराम जी स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करो। तो ऐसे ये असुर थे जो इंतजार कर रहे थे बलराम की कृपा का। तो ऐसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि भगवान ने, बलराम जी ने प्रलंबासुर को मार दिया। वैसे ये प्रलंबासुर जब मारा तो सारे ग्वाल बालों को पता चला, वो भागते हुए आए, उन्होंने देखा इतना विशाल प्रलंबासुर मरा पड़ा है, तो उन्होंने बहुत गुणगान किया बलराम जी का। कोई ग्वाल बाल सोचने लगे बलराम कहीं देवता तो नहीं है, इतने बड़े कैसे मार दिया। बोला नहीं नहीं देवता नहीं हो सकता, ये हमारा मित्र है, शक्ति है इसके अंदर, कर देता है। तो ऐसे उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया। तो प्रलंबासुर हमारे हृदय में एक बड़े बड़े ही खतरनाक और बहुत शक्तिशाली अनर्थ को प्रकट करता है, और ये ऐसा अनर्थ है जिसके विषय में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस अनर्थ को दूर करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर दो अनर्थों के बारे में कहते हैं, एक धेनुका सुर और एक प्रलंबासुर, कि इन दो अनर्थों को दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। भगवान की कृपा तो निश्चित आवश्यक है, लेकिन इन दोनों के लिए हमें बहुत प्रयास स्वयं करना पड़ता है। अन्य जितने भी असुर अभी तक हमने देखे या आगे देखेंगे तो वे गुरु की कृपा से, साधना से हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो कौन असुर है, ये क्या प्रकट करता है? प्रलंबासुर हमारे हृदय में एक काम वासना, अर्थात जब हम एक स्त्री पुरुष को देखती है या पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है उसको प्रकट करता है। साथ ही साथ पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसकी कामना को प्रकट करता है। तो इसलिए बड़ा खतरनाक है, एक तरफ स्त्री पुरुष आकर्षण को प्रकट करता है, दूसरी ओर पूजा लाभ प्रतिष्ठा को प्रकट करता है, और ये दोनों हमारे लिए भक्ति में बहुत भयंकर बाधाएं हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि हमें प्रयास करना है इनको दूर करने के लिए, कि किस तरह ये जो भावनाएं हैं, जब व्यक्ति के हृदय में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है, स्त्री संग करने की भावना आ जाती है, तो जो कृष्ण को पाने की भावना हृदय में है वो समाप्त हो जाती है, या कहना चाहिए कि इन भावनाओं से हम कृष्ण का वध कर देते हैं जो हमारे हृदय में स्थापित हैं। तो इसलिए कृष्ण को पाने की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। बहुत खतरनाक, बहुत गंभीर ये अपराध हैं। तो ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा या कामना, ये किसके लिए? क्या ये कहा जाता है कि काम वासना को किसको वश में करना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको नहीं, गृहस्थों को भी काम वासना को बहुत, ब्रह्मचारी और सन्यासियों को तो करना ही चाहिए, लेकिन गृहस्थों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को खुली छूट है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तो जो भावना है स्त्री संघ की, गृहस्थों को भी करनी है, और जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की है वो गुरु को भी करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गुरु हो गया और अब वो केवल इच्छा करे कि मेरे कई शिष्य हो जाएं, मेरा नाम हो जाए, जहां जाऊं लोग मुझे प्रणाम करें, जहां भी जाऊं हजारों लोग मेरे प्रवचन सुने, ये भावना भी ठीक नहीं। इसीलिए इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों भावनाओं से हम बचें। चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला की, गुंडीचा मार्जन की लीला, बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। गुंडीचा मार्जन की लीला में पहले महाप्रभु ने केवल बहुत सारे जो धूल कंकड़ इत्यादि थे उन सबको इकट्ठा किया, और जब वो हो गया, सबने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, एक एक ने बड़ा बड़ा ढेर लगाया, तब महाप्रभु ने वो जो अंदर क्रैक्स थे उसके अंदर जो गंदगी थी उसको निकालना शुरू किया। और ये जो क्रैक्स की गंदगी निकाली, ये इस चीज को संबोधित करने के लिए कि हालांकि हम लोग बाहरी दृष्टि से बहुत भक्त हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते इत्यादि, ये बाहरी चीजें हम छोड़ देते हैं। तो बाहरी चीजें क्या, पहली बार जो महाप्रभु ने कचरा इकट्ठा किया, लेकिन जो अंदर रहता है उसको छोड़, महाप्रभु ने उसको भी निकाला, सब उसको भी निकालो धीरे धीरे सब। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर से झाड़ू लगा देते हैं यहां पर तो बड़ा साफ दिखता है, लेकिन ये जितने गैप हैं बीच में, इनमें अगर आप एक कुछ ऐसा नुकीली चीज डालकर निकालिए तो देखिए कितनी गंदगी निकलेगी। तो ये हमारा हृदय की स्थिति है कि बाहरी दृष्टि से हम भक्त हो गए, हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया, ये केवल ऊपर ऊपर का कचरा साफ हुआ है, अंदर बहुत है। और अंदर क्या है, चैतन्य चरितामृत समझाती है, अंदर आपके अंदर कूटी नाटी है, प्रतिष्ठाशा है, निषिद्धाचार है, काम है, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, हिंसा है, हिंसा अर्थात द्वेष। तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना इस तरह है। तो वो समझाते कूटी नाटी अर्थात दोष ढूंढने की प्रवृत्ति हम सब में है, ये सूक्ष्म है। तो कूटी नाटी है प्रतिष्ठाशा, जहां बहुत से प्रतिष्ठा की हमें आशा हो, हर जगह हम प्रतिष्ठा की कामना करें, जो काम करें पहले काम करते समय सोचें कि अच्छा करूंगा तो मेरी गुणगान होगा, प्रतिष्ठाशा। फिर हिंसा, हिंसा अर्थात द्वेष करना। दूसरा निषिद्धाचार, वो चीजें जो शास्त्रों में मना हैं उनको करना, इसको कहते हैं निषिद्ध आचार, जो निषिद्ध है, जो मना है, और उनको हम बड़े आनंद से करते हैं, जीवन का भाग मान लेते हैं। और फिर काम और पूजा, आप इस समय अगर बाहर का वातावरण देखें, हमारा जो आधुनिक जगत का वातावरण है, चाहे वो आपका टीवी हो, इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर हो, जितना भी मीडिया का चीज हो, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रलंबा सुर को बढ़ावा दे रहे हैं। बस प्रलंबा सुर को बढ़ावा कैसे, एक तरफ स्त्री संघ की भावना को बढ़ा रहे हैं, आप कोई सीरियल ले लीजिए, एक ही चीजें दिखाई जाती हैं, किस तरह स्त्री संघ करना, स्त्रियों को केवल एक भोग की वस्तु के रूप में प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारा आज का मीडिया है कि उन्होंने केवल स्त्री को एक भोग की वस्तु बना दिया। तो जो भी देख रहे हैं, बालक से लेकर वृद्ध तक, उनके मन में यही भावनाएं आ रही हैं कि वो व्यक्ति भोग कर रहा है, मुझे भी भोग करना है, प्रेरणा दी जा रही है। और दूसरी ओर प्रेरणा दी जा रही है कि आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, अपना वीडियो अपलोड कीजिए, कितने लाइक्स आए आपको, क्या हुआ, दूसरी ओर प्रसिद्धि की। तो जो आज हम देख रहे हैं, ये सारा जो मीडिया है, ये शूर्पणखा है। बलराम जी की आवश्यकता है नाक कान काटने के लिए इनके। शूर्पणखा क्यों है, शूर्पणखा ने क्या किया, रावण के पास गई और रावण के हृदय में काम वासना को भड़काया, ये शूर्पणखा का काम था। हालांकि उसके हृदय में वासना थी, वो रामचंद्र जी के पास अपनी वासना पूरी करने आई थी, हो नहीं सका, तो जाकर रावण से क्या कहा उसने कि मैं तो राम के पास गई थी सीता को लेने के लिए, आपके लिए, बहुत सुंदर है सीता। और उसने सीता की सुंदरता का वर्णन किया, कैसे कैसे सुंदर है सीता। उसको सुन सुनकर रावण के हृदय में काम वासना इतनी तीव्र हो गई कि उसने वो सीता का हरण करना सोच लिया। तो इस समय जितने भी मीडिया है, ये सब शूर्पणखा हैं, ये सब प्रलंबासुर के अनुयायी हैं। और प्रलंबासुर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? केवल यही। और आप देखिए, ये कोई केवल कहने की बात नहीं है। आप बताइए, आज कौन सी ऐसी पिक्चर आती है जहां बहुत धार्मिक चीजों को प्रमोट किया जाता है? अगर कोई धर्म के नाम पर बनती भी है तो ऐसी कि व्यक्ति धर्म पालन करना छोड़ दे। कहां पिक्चर जैसे पहले आती थी, प्रहलाद महाराज पर पिक्चर बनी है, प्रहलाद की कथा, किस तरह प्रहलाद को पूरा विश्वास था भगवान पर और कैसे भगवान ने रक्षा की। ये पूर्व काल में पिक्चरें बनती थी प्रहलाद के जीवन पर, ध्रुव के जीवन पर। आज कहां बनती है? आज पिक्चरें क्या बनती हैं कि बस एक लड़का है, उसने ये किया, लड़की के पीछे है, उसके लिए वो प्राण देने के लिए तैयार है। भगवान के लिए प्राण देने के लिए कोई हीरो तैयार नहीं है। बताइए कौन से हीरो ने भगवान के लिए प्राण दिए? उल्टा निंदा करते हैं हीरो बनकर, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये सब झूठ है, रॉन्ग नंबर है। तो एक लड़की के लिए जान देने तैयार है, कृष्ण के लिए नहीं। देखते हैं ना आप लोग पिक्चरों में, वो चाकू लग गया फिर भी लड़ रहा है, पता नहीं कैसे लड़ते हैं, वो तो अलग बात है, पता देखना पड़ेगा जाके। चाकू लग गया, गोली लग, आजकल तो ये भी होता है, गोली लग गई तो भी लड़ रहा है, वाह, गोली खाकर। किसके लिए? एक लड़की के लिए। और अंत में पता नहीं कभी मिलते हैं कभी मरते हैं, जो भी है, हैप्पी एंडिंग है जो। तो ये जो मीडिया है ये इतना प्रमोट कर रहा है इस चीज को कि बालक बाल्यपन से वो मन में घुस जाता है, हमें यही करना है, हीरो ने किया हम क्यों नहीं करें। ये सारी चीजें बच्चों के मन में इसको बैठा देना। तो इसीलिए इन चीजों से हमें बचना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रयास करना चाहिए हमें प्रलंबासुर को मारने के लिए? हम कैसे मार सकते हैं प्रलंबासुर को? सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए, हम ऐसी सारी स्थितियों से दूर रहने का प्रयास करें जहां हमारे हृदय में काम वासना भड़कती हो। प्रभुपाद गजेंद्र मोक्ष के कथा के समय एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त को अपने आप को ऐसी स्थिति में कभी नहीं डालना चाहिए जहां माया प्रभावी हो जाए। जैसे गजेंद्र ने पानी में जाकर मगरमच्छ से युद्ध किया तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अगर वही मगरमच्छ से उसने जमीन पर किया होता तो शायद जीत जाता। इसीलिए अपने आप को कभी, तो पहली चीज प्रलंबासुर को मारने के लिए है कि हम कभी भी अपने आप को प्रयास करें कितना दूर रख सकते हैं उस स्थिति से जहां ये सारी चीजें हमारे लिए बढ़ रही हैं। तो प्रश्न आएगा, वो तो रख ही नहीं सकते दूर, हर जगह है, इंटरनेट पर है, टीवी पर है, मूवीज में है। मत देखिए मूवीज, निकाल दीजिए टीवी घर से, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि घर में टीवी नहीं होगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा, आपकी प्रगति नहीं होगी। ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। मान लीजिए कोई आपके घर में आए और टीवी नहीं देखे तो कहेंगे अरे आपके घर में टीवी भी नहीं है, तो लोग नीचे मानने लगे हैं। उल्टा व्यक्ति को गर्व होना चाहिए और गर्व से कह रहे आप इतने महान हो कि टीवी नहीं है आपके घर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे उल्टा है, इस कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो 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 लड़के शराब पीते हैं, जो लड़के सारे गलत काम करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, उनका गुणगान होता है। जैसे हमारे हीरो फिल्म के क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं, गलत चीजें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका बड़ा गुणगान है। और दूसरी ओर जो लोग अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हैं उनकी निंदा की जाती है कि अरे देखो देखो ये लोग कितना गलत काम कर रहे हैं समाज में। ये कलयुग है, तो जिस चीज का गुणगान होना चाहिए, अरे एक व्यक्ति ने अपना सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति को उसके माता पिता को उस स्थान को अपने सर पर रखना चाहिए, कितना बड़ा काम किया है इसने। लेकिन नहीं, एक साधु आए तो कोई देखने नहीं आता, एक हीरो आ जाए फिल्म का तो लोगों को रोकना पड़ता। ये कलयुग है, तो इसी तरह जब कलयुग में ये बात हो गई कि जिस चीज को बहुत महत्व देना था उसको नीचा देखा जाना लगा है, तो फिर इसमें क्या गलती है कि जब इन चीजों को बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है, कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये जो करना है ये ठीक, हम जो कर रहे हैं स्त्री संग करना, भोग करना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो फिर कैसे अवॉइड करें? अवॉइड कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपके घर में टीवी नहीं है और अगर कोई आकर बोलता अरे टीवी नहीं है, तो पत्नी को चिंता नहीं होनी चाहिए, पति को नहीं बोलनी चाहिए कुछ भी हो टीवी लेकर आओ, मेरी बेइज्जती हो गई। गर्व से कहना चाहिए नहीं है टीवी हमारे घर में। हम थिएटर नहीं जाते हैं, गर्व से कहना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों में कुछ कमी रह गई, मैंने उनको कभी थिएटर नहीं दिखाया, कोई कमी नहीं रह गई है बच्चों में, उल्टा अच्छा है, संस्कारी बच्चे बनेंगे, आगे चलकर आपको त्यागेंगे नहीं, आगे चलकर आपको कष्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए ये जो हमने स्टैंडर्ड बना दिया है, क्या स्टैंडर्ड है? घर में टीवी होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, कम से कम ये तो कर, तब इसीलिए हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते। और प्रश्न आते प्रभु जी अवॉइड कैसे करें, ये तो संभव ही नहीं। संभव है, प्रयास कीजिए, जो चीज अवॉइड कर सकते हैं वो तो कीजिए, और जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या करना है। तो पहली चीज, जितना हो सके ऐसी स्थिति में अपने आप को मत डालिए जहां हमारे हृदय में प्रलंबा सुर बहुत तेजी से प्रकट हो। दूसरा चीज, प्रयास कीजिए, एक स्थिति में मत डालिए। दूसरा चीज, अगर आप उस स्थिति में हैं तो बहुत संघर्ष कीजिए, प्रयास कीजिए कि हमारा मन उसकी ओर आकर्षित ना हो। यही संघर्ष जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, मन षष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये संघर्ष है हमारा, और कोई संघर्ष नहीं है, रोटी खाने का संघर्ष नहीं है, भगवान ने जानवरों तक के लिए व्यवस्था की है। संघर्ष है कैसे हम अपने मन को, इंद्रियों को इन चीजों से बचा कर रखें। मन षष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो कैसे बचाएं? प्रयास कीजिए, अगर उस स्थिति में है मन का स्मरण कीजिए। जो चीज हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो प्रभाव करती है मन पर और हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए रोज भगवान के नाम का जप कीजिए, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन होगा। अगर हम मन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थितियों से अपना संघर्ष करना चाहते हैं, तो फिर अच्छे से जप कीजिए, कथा सुनिए, ये हमें मजबूत करेंगे। ये चीजें हमारे लिए कवच के समान हैं। जब हम लोग तिलक लगाते हैं 12 स्थानों पर, तो हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम उन स्थानों को सुरक्षित कर रहे हैं भगवान के नाम के द्वारा, और एक कवच पहन रहे हैं। तो जप करना एक कवच है, कथा सुनना एक कवच है, भक्ति के अन्य नियमों का पालन करना कवच है। अपने आप को कवच पहनकर पहुंचिए युद्ध में, फिर देखिए कैसे नहीं आपकी रक्षा होती। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो अपने आप को हमें बचाने का प्रयास करना। और तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस चीज को नाश करती है, और वो है नम्रता। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। नम्रता, जिसे हम कल भी वर्णन कर रहे थे, भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। तो इसीलिए जब नम्र होंगे, भगवान की कृपा आएगी, बलराम जी आएंगे इस प्रलंबासुर को मारने के लिए। तो हमें प्रयास करना है। तो इस तरह से प्रलंबासुर का वध हम कर सकते हैं, कि किस प्रकार ये जो प्रलंबासुर हमारे हृदय में है, बहुत भयंकर है, इससे हमें दूर जाना है। तो ऐसे जब ग्वाल बालों ने देख लिया, बड़े प्रसन्न हुए, गुणगान किया बलराम जी का, और ऐसे ही अध्याय समाप्त हुआ। और फिर अगले अध्याय में, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था 18 और 19 अध्याय को आज कहेंगे, क्योंकि बड़ा छोटा अध्याय है दोनों। तो 19वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि एक बार और दावाग्नि लगी। पिछली बार लगी थी जब भगवान ने कालिया का वध किया और रात्रि को वहीं रुक गए थे। अब ग्वाल बालों को लेकर जब वन में गए हैं, तब फिर से दूसरी बार दावाग्नि लगी। तो ये वर्णन 19वें अध्याय में किया जाता है। 19वां अध्याय बड़ा छोटा 16 श्लोकों का अध्याय है। पहले 5 श्लोकों में वर्णन किया गया कि कैसे श्री कृष्ण और ग्वाल बाल थे और वो गायों को ढूंढने लगे, गायें दूर चली गई थी, और फिर आगे 6 से लेकर 16 तक कैसे भगवान ने उस दावाग्नि को पिया। तो संक्षेप में उसका वर्णन कर देते हैं। तो ऐसा हुआ कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ खेल रहे थे। ऐसा हो गया खेलते खेलते वो लोग बहुत मग्न हो गए, गायें चर रही थी और गायों उनको भूख ज्यादा लगी तो वो धीरे धीरे अंदर चली गई और ज्यादा गहन वन में घुस गई। अब यहां वो लोग खेल रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खेलते खेलते अचानक नजर गई, अरे गाय कहाँ गई? तो सबने देखा इधर उधर, यही होंगी, अरे नहीं है, तो सब भागे, अरे कृष्ण भी बलराम भी सब भागे, अरे कहाँ गई गाय, कहाँ है? तो देखा कहीं गाय दिख ही नहीं रही है, तो सारे दुखी हो गए, अरे गाय कहीं चली जाएंगी, हमारा हम लोगों को क्या होगा, घर जाएंगे डांट पड़ेगी, हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा? तो सब भाग रहे इधर उधर, चलो देखें देखें। तो कृष्ण का एक मिनट रुको, गायों के जो चिन्ह है चरणों के पांव के उनको देखकर चलते हैं, तो उनके खुरों को देखते हुए अब चले कि हाँ यहाँ गई हैं, यहाँ गई हैं। तो करते करते वो आए और देखा सामने गायें चर रही हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, हाँ मिल गई गाय, ये सोचा आज तो गई। तो वो वन में थी, अब वो अलग अलग जगह पर थी इधर उधर, तो कैसे सब जाएं लाएं उनको, कृष्ण का चिंता नहीं करो। कृष्ण हर एक गाय को नाम से पुकारने लगे और गायों ने सुना कृष्ण पुकार रहे, जहां थी वहां से भाग कर आई। देखिए कृष्ण हर एक गाय के नाम को जानते थे, नाम से पुकारते थे। हर एक गाय क्या, वो तो हर एक जीव को जानते हैं, असंख्य असंख्य जीव हैं, उन सबको वो जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने पुकारा तो गायें सब भाग कर आ गईं, और सब आ गईं, सब बड़े प्रसन्न हुए। अब सब एक जगह थे, ग्वाल बाल गायें सब, और अचानक वन में आग लग गई, चारों ओर घिर गए वो लोग आग से। ऐसा होता है वन में कभी कभी, दावाग्नि जिसको कहते हैं लग जाती है। इस संसार भी इसी तरह है, संसार दावा नललि ढलोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो संसार भी ऐसा ही है, अचानक आग लग जाती, कोई लगाता नहीं है। तो वन में ऐसा ही है, कोई आग लगाता नहीं, अपने आप लग जाती है। तो अग्नि लग गई और सारे भयभीत हो गए, और उस समय सारे ग्वाल बालों ने कृष्ण की शरण ली, कृष्ण कृष्ण महावीर बुलाने लगे कृष्ण को, हे कृष्ण हे कृष्ण हे महावीर, बहुत वीर हो आप, हमारी रक्षा करो, अब और कोई नहीं है जो आपके अलावा जो हमारी रक्षा कर सके। तो जब ऐसे ग्वाल वालों ने पुकारा कि आप हमारी रक्षा करो, तो फिर श्री कृष्ण ने कहा ठीक है सब लोग आंखें बंद कर लो। तो सबने आंखें बंद कर ली। देखिए कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा कृष्ण पर है, चारों ओर आग लगी है और कृष्ण कह रहे हैं आंख बंद कर लो, सब आंख बंद कर लेते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बैठे कोई आंख बंद, हम देख रहे नहीं, आग मेरे पास आ गई तो क्या होगा। अब वो लोग बैठे, उन्होंने कहा ठीक है आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद कर ली। तो कृष्ण ने पूरी जो अग्नि थी वो पी गए, अपने मुंह में ले ली, अंदर चले गए, पूरी अग्नि गायब। और इतना ही नहीं, ग्वाल बाल जहां थे वहां से उन्होंने भांडीर वट जो दूर था वहां से उस तक सारी गायों को ग्वाल बालों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, पहुंच गए अपने आप। तो जब उन्होंने आंखें बंद की, वो घने जंगल में थे, आग लगी हुई थी, और जब देखा कि शांत हो गई, कृष्ण ने कहा ठीक है आंखें खोलो, सबने आंखें खोली तो देखा कि वो उस स्थान पर ही नहीं थे, अग्नि भी चली गई और वो भांडीरवट पहुंच गए थे। तो वो सोचने लगे कृष्ण के पास लगता है कोई जादुई शक्ति है, ऐसे कर लेता है कभी कभी। तो फिर ऐसे इस लीला को भी कहा गया कि कैसे वो स्थान को पहुंच गए और भगवान ने दूसरी बार दावानल पान किया। ये जो अग्नियां हैं, ये दोनों अग्नियां पहली और अब, ये भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं भक्तों में होने वाले आपसी मतभेद हैं, या फिर कभी कभी हम अन्य धर्मों के प्रति या अन्य धर्मों का आक्रमण या अन्य धर्मों का संस्था के प्रति कुछ गलत भाव। तो पहली अग्नि है भक्तों के बीच, दूसरी अग्नि है अध्यात्मवादियों के बीच। तो इसको कैसे दूर करना चाहिए? भक्तों के बीच मतभेद या द्वेष, घृणा, ये पूरी भक्ति को जलाकर नाश कर देती है। कभी कभी हमें भक्तों में आपस में कुछ भेद हो जाता है और हम फिर भक्ति को त्याग देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग त्याग देते हैं। क्योंकि कई भक्तों के मन में आता है कि अगर भक्तों के संग में ही नहीं रहेंगे तो अपराध नहीं होगा, वैष्णव अपराध, इसलिए संग से ही दूर चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो अग्नियां हैं ये भक्तों के बीच होने वाले मतभेद को दूर करने के लिए हैं। कृष्ण पर अगर पूर्ण श्रद्धा है, अगर हम ये सोचें कि हम सब यहाँ कृष्ण की सेवा के लिए हैं, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। जब हॉस्पिटल में हो तो एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी टांग टूटी है, एक ही, मेरी तो दो टांगें टूटी हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। जब हॉस्पिटल में हो तो हमें ये मानना चाहिए कि हम सब रोगी हैं, ठीक होकर जब बाहर जाएंगे तब अच्छे होंगे। इसी तरह इस जगत में हम सब रोगी हैं, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, अर्थात हमने आध्यात्मिकता का मार्ग स्वीकार कर लिया है, अब एक दूसरे को सहयोग करना है। तो इसीलिए मतभेद की भावना दूर हो सकती है सहयोग से। सहयोग की भावना को बढ़ाएं, प्रभुपाद कहते थे कि सभी भक्तों को सहयोग करना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रधानता ना देते हुए श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को प्रधानता देनी चाहिए। अपनी मान सम्मान अपमान की भावना को प्रधानता न देते हुए कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने की मान्यता या प्रमुखता देनी चाहिए। तो हम ये नहीं सोचे कि मेरा मान बढ़े, हम सोचे कैसे कृष्ण का प्रेम बढ़ सके, कृष्ण का भक्ति बढ़ सके, कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रचार हो सके, ये भावना हमें चाहिए। तो इसीलिए भक्तों में जो मतभेद हैं ये अग्नि की तरह हैं, लेकिन अग्नि को शांत करना चाहिए। और इसीलिए कृष्ण पर पूर्ण विश्वास, भक्तों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, और अपनी अपनी इच्छाओं को पीछे रखते हुए, भावनाओं को पीछे रखते हुए प्रभुपाद के आंदोलन को हम ज़्यादा महत्व दें, तब हम जीवन में इस अग्नि को भी शमन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी पूछना चाहते हैं? हाँ जी। हरे कृष्णा हरे राम, यस।
तो ऐसे मतलब पिक्चर जो सॉन्ग होते हैं इससे कुछ उनको कुछ
लाभ मिलता है? नहीं। प्रश्न ये है कि भागवत में भी कहा गया है कि अगर कोई संकेत से भी नाम ले लेता है या मजाक में नाम ले लेता है, अनजाने में नाम ले लेता है, तो उसको भी लाभ होता है। तो फिर ऐसे लोग जो पिक्चर बनाते हैं, जैसे दम मारो दम बनी थी या उसमें गाना आया था बड़ा प्रसिद्ध हुआ, तो क्या उनको भी लाभ मिलता है? प्रभुपाद ने उसके विषय में कहा हुआ है, प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि उस समय प्रश्न प्रभुपाद को पूछिए, मूवी उस समय की है, तो प्रभुपाद को पूछा गया कि ये क्या, इसको क्या होगा, ये इतना इसने नाम खराब कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, उसने तो प्रसिद्ध किया है, कितने लोग हरे राम हरे कृष्ण बोले उसकी वजह से, है ना, भले गलत रूप में बोले, दम मारो दम या जो भी है, लेकिन बोला तो हरे राम, प्रभुपाद ने उसको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने जाने अनजाने में लोगों के मुख से कितने लोगों ने गाया होगा, देखो आप सोचो, समझिए उस समय वो व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध थे और उनकी पिक्चर आती थी तो बहुत लोग देखते थे, और ये गाना तो पता नहीं, उनकी पिक्चर से ज़्यादा गाना प्रसिद्ध हुआ था, लोगों को पिक्चर याद नहीं लेकिन गाना याद, आज भी याद है। और आपको विश्वास नहीं होगा, 3-4 साल पहले हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हमने सुना है इस्कॉन वाले सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्यों, वो हमने सुना वो दम मारो दम, तो वो लोग बस यही करते हैं, दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम। तो तो आज भी लोगों के मन में वो है, तो देखिए कितना प्रभाव कर दिया उसने। तो भले थोड़ा सा गलत हुआ हो, लेकिन फिर भी लोगों ने हरे कृष्ण हरे राम तो कहा। जय श्री श्री गौर नटराज दयानंदाय की जय। निश्चित लाभ होगा। तो भगवान का नाम अग्नि की तरह है। अग्नि में अगर बच्चा जान के अनजान के भी हाथ डाल देता है तो अग्नि जला देती है। अग्नि नहीं सोचेगी बच्चा है इसको नहीं जलाना, गलती से डाल रहा है। तो नाम ऐसा बड़ा शक्तिशाली है, कोई अगर ले लेता है तो फिर महाप्रभु ने कहा अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम ले ले वो वैष्णव है। तो इसीलिए लाभ जरूर होगा, निश्चित, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और कोई प्रश्न है बोलिए। भगवद गीता के 108 श्लोकों को कैसे याद करें? हमने कुछ याद करने की बात कही। अच्छा, तो भगवद गीता के 108 श्लोकों को याद करना हो तो पहले एक एक श्लोक का हमें एक एक श्लोक से प्रारंभ करना चाहिए। उसकी पहली लाइन को 3 बार, दूसरी लाइन को 3 बार, तीसरी चौथी ऐसे उसको 3-3 बार करके फिर पूरा श्लोक करना चाहिए। और उसके अर्थ हमें पता होने चाहिए। अगर हमें शब्दों के अर्थ पता हैं तो बहुत जल्दी हमें याद हो जाते हैं। जैसे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुह्यति। तो अगर इसके शब्दार्थ नहीं पता है तो आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, लेकिन शब्दार्थ पता है देहिनोस्मिन यथा देहे, इस देह में जो देही है, तो इस तरह से अगर हमें सब पता हो तो हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, यस, आगे बोलो।
अध्यात्मवादियों में मतभेद पर चर्चा हुई नहीं हुई, भक्तों के मध्य मतभेद पर चर्चा हुई है, प्लीज अध्यात्मवादी के बारे में भी थोड़ा बताएं।
अध्यात्मवादियों के मतभेद पर चर्चा नहीं हुई, केवल भक्तों के बीच में हुई, क्योंकि हमने सोचा कि आपके लिए वही महत्वपूर्ण है कि अभी पहले हम इससे बाहर आएं। अध्यात्मवादियों के बीच में बहुत से विचार होते हैं, जैसे अपने संस्था अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को कम मानना, अपने जो सिद्धांत हैं उसी को स्थापित करने का प्रयास करना चाहे उसका आधार हो या ना हो, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, और फिर अध्यात्मवादियों में भक्ति के जो कई तत्व हैं, धर्म के जो कई तत्व हैं, उनमें भी बहुत से भेद हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे किस तरह से जीव इस जगत में आया, इस पर अनादिकाल से अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत हो रही हैं। फिर भगवान का रूप है या नहीं है, ये तो बहुत प्रसिद्ध वाद है, ऐसे कई वाद होते हैं। इसलिए हमने उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि पहले हमें अपना घर ठीक कर लेना चाहिए, फिर हम दूसरों का घर ठीक करने का प्रयास करें। क्या प्रश्न है और कोई?
हमारे यहाँ हरे राम हरे कृष्ण वाला जो मंत्र है उसका पुकारते हैं लोग, तो क्या ये सही है? पहले हरे राम महामंत्र पे हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम।
हम लोग पहले हरे राम नहीं करते, हम लोग पहले हरे कृष्ण।
लोकल एरिया में शायद ऐसा कुछ होगा।
हाँ, उनके लोकल एरिया में ऐसा है कि प्रभुपाद ने कहा है, ठीक है चाहे राम पहले बोलो या कृष्ण बोलो, कम से कम बोलो तो सही, बोलना चाहिए। लेकिन ये मंत्र वैसे पहले कृष्ण है, ये मंत्र ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी पहले आए थे इसलिए पहले राम का नाम है और कृष्ण बाद में आए, तो ये धारणाएं नहीं है। मंत्र यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिनको ये ज्ञान है उन्हें ऐसे ही लेना चाहिए, जिनको ज्ञान नहीं है भले राम पहले लें कोई बात नहीं, कम से कम नाम तो ले रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाभ होगा।
और इवेंट्स आर सीक्वेंसली हैपन, इज देयर एनी रीजन फॉर इट, इज इट मॉनिटर्ड बाय कंसा?
कौन से?
दिस ऑल इवेंट्स आर,
इधर रख दो मैं पढ़ लेता हूँ ठीक से, इसमें आ रहे हैं ना, थोड़ा ब्राइट करो उसको। हाँ बस, ऐसा है कि ये प्रश्न है कि ये जो सारे जो हो रहे हैं लीलाएं, तो तो ये एक लाइन से हो रही है एक के बाद एक, तो क्या इसका कोई कारण है या कंस ने ऐसे कुछ ध्यान रखा था? नहीं, सुखदेव गोस्वामी जितना हो सक रहा है उतना वो बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण लीला को प्रारंभ कर रहे हैं तो उन्होंने बताया जन्म हुआ, फिर पूतना वध किया, फिर तृणा शक्तासुर तृणावर्त, तो ऐसे वो लाइन से बता रहे हैं जैसे जैसे उनको स्मरण है और जितना वो बता सकते हैं, तो इसलिए उसमें कंस का कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अपनी लाइन से उसको बताते जा रहे हैं। पहले हरे राम आता है और बाद में हरे कृष्ण आता है, ये हमारे पुरखों से हो रहा है, तो क्या ये भी गुरु परंपरा है? दो तरह की परंपराएं होती हैं, जो एक शास्त्र या आचार्यों के आधार पर चलती हैं और दूसरी लोकोक्ति, लोगों के कहने से शुरू हो जाती है और सालों साल चलती है और वो चलती रहती है। तो ये कहना कि क्योंकि हमारे पुरखों से ये आ रहा है कि हरे राम पहले है इसीलिए हम इसको परंपरा माने, ये सही नहीं है। परंपरा वो है जो शास्त्र के आधार पर है, और शास्त्र कहता है कि पहले कृष्ण आता है, हरे कृष्ण पहले है, हरे राम बाद में है। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ परंपरा से चली आ रही है लेकिन अब हमें शास्त्र के आधार पर आचार्यों के आधार पर पता चलता है कि ये सही नहीं है तो उसको बदलना चाहिए। केवल क्योंकि हमारे पुरखों से आ रही है, पहले से चली आ रही है, हम इसको नहीं बदलेंगे, इसके द्वारा तो केवल हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो इसीलिए पहले कृष्ण है ये प्रमाण है शास्त्रों में, क्योंकि प्रभुपाद भी भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इस मंत्र में पहले कृष्ण ही होने चाहिए, कृष्ण ही हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे आचार्यों का शास्त्र का पालन करना ज़्यादा आवश्यक है, ना कि जो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। थोड़ा इसको घुमाएं ऐसे। हाँ, अगला प्रश्न है, जॉइंट फैमिली है और तीन मैरिड कपल हैं, बिल्कुल आनंद भोग के जीवन जीते हैं, तो स्थिति में सिंगल पेरेंट डिवोटी बच्चे के साथ कैसे सर्वाइव करें और बच्चे को भी कैसे भक्ति में लाएं जब पूरी तरह डिपेंडेंट हो हर वस्तु के लिए, तो क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत स्थानों पर होता है। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से परिवार पर आश्रित है, भक्ति करना चाहता है, अपनी संतान को भी भक्त बनाना चाहता है, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल विरोधी हैं, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि परिवार को त्याग नहीं सकता और वहाँ पर रहकर भक्ति कर नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? हमें लगता है यही मूल प्रश्न है। तो हाँ, इस स्थिति में जितना सबसे पहले हम जितना कर पाएं, हम लोग कभी कभी देखते हैं अपनी तुलना अन्यों से करने लगते हैं, देखो उनका परिवार कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनके घर में उनके पति भी भक्त हैं, पत्नी भी भक्त है, उनके माता पिता भी भक्त हैं, कितना अच्छा वातावरण है, ये सोचकर सबसे पहले हमें थोड़ी सी निराशा हो जाती। तो पहली चीज, हमें दूसरों से तुलना करना बंद कर देना चाहिए। जितनी आप तुलना करेंगे, हो सकता है किसी के घर में भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है, लेकिन जितनी आप तुलना करेंगे उतना आप कष्ट में जाएंगे, उतना आपको निराशा होगी और आप जो सही चीज कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज, निराशा को समाप्त करने के लिए तुलना बंद कर दीजिए। जब आप दूसरे परिवार को देखें जहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है, अगर मैंने भी इस जन्म में अच्छी भक्ति की तो हो सकता है अगली बार मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। तो इसीलिए हमें तुलना करना बंद करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपनी स्थिति में रहते हुए जितना कर सकते हैं क्या हम उतना कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ये स्थितियां हैं सारी, लेकिन फिर भी उनमें अवसर होता है भक्ति करने का, हम उस अवसर को भी नहीं लेते ये सोच करके अरे नहीं स्थिति ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज ये सोचिए, पहली चीज तुलना बंद कीजिए, दूसरी चीज जो आपको अवसर मिल रहा है भक्ति करने का जितना भी, देखिए अगर कोई भी घर में बिल्कुल भक्त नहीं है, एक भी व्यक्ति भक्त बना है तो कहीं ना कहीं तो उसको अवसर मिला, घर वालों ने उसको जाने दिया किसी सत्संग में, किसी भक्त से मिलने के लिए, या उसको सुनने दिया लेक्चर, जप करने दिया, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ। तो जो हमें अवसर मिला उसका हमने पूरा लाभ लिया या नहीं लिया? जो अवसर हमें रोज मिल रहा है उसको हम पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहे हैं या नहीं? मान लीजिए घर में रहते हुए आपको एक दो घंटा पूरे अपने मिलते हैं, कोई उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप उसमें क्या करते हो? आप क्या सोते हो या मित्रों से बात करते हो, या फिर उस अवसर को बहुत लाभ लेते हुए बड़े ध्यान से बैठकर जप करते हो, कोई प्रवचन सुनते हो, क्या करते हो? तो ये दूसरी चीज होनी चाहिए कि क्या हम उस अवसर का लाभ ले रहे हैं जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये भी हमें ध्यान लेना चाहिए। तीसरी चीज, पहली हमने कर ली तुलना नहीं करें, अवसर का जितना मिलता है लाभ लें। तीसरी चीज, हमेशा ध्यान रखें कि घर में असंतुलन ना हो। हम ये सोचते हुए कि ये लोग भक्त नहीं हैं, ये पापी अधर्मी हैं, खैर वो नहीं सोचते होंगे लेकिन जो भी, तो ये सोचते हुए हम उनके साथ अच्छा आचरण नहीं करें, ये भी गलत है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, अर्थात आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए इस उद्देश्य कि आज नहीं 2 साल बाद 10 साल बाद ये लोग भी भक्त नहीं भी बने तो कम से कम भक्ति के प्रति अच्छी भावना रखेंगे। कैसे रखेंगे? जब मेरा आचरण अच्छा होगा। तो तीसरी चीज हमें ये कर लेनी चाहिए कि संतुलन को बनाए रखें, परिवार के कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी से करें, गंभीरता से करें, उनमें ये भावना कभी ना आने दें क्योंकि आप भक्त बने हैं इसलिए आप अब उनके साथ नहीं रहते, आप अब उनका उनके साथ कार्य नहीं करते इत्यादि, तो उनको भी आप प्रयास कीजिए भक्त बनाने का। तो अपने अच्छे आचरण से उनको भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। चौथी चीज, जो बच्चे हैं वो लोग ऐसे वातावरण को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि वो भक्त भक्ति करने में बहुत गंभीर नहीं हो पाएंगे। तो ये माताओं का या माता पिता का कर्तव्य है कि अगर वो ऐसे वातावरण में हैं तो प्रयास करें कि उनकी जो नींव है उसको बड़ी मजबूत करें। बच्चा जब भी आपके पास हो तो उसको आप वो कथाएं सुनाएं जिससे उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, उसको ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएं, जब भी अवसर हो उसकी जो नींव है उसको जितना आप मजबूत कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगर नींव मजबूत है तो फिर वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होगा भी तो इतना नहीं होगा कि उसकी सारी भक्ति का नाश हो जाए। तो कितना हो सके हम उसकी नींव को कैसे मजबूत कर सकते हैं हमें ये देखना चाहिए, अर्थात अकेले समय में जब वो अन्यों के साथ ना हो तो कितना हम उनको कथाएं सुनाएं, कितना हम उनको अन्य ज्ञान दें, जब अवसर मिले तो ऐसे बच्चों के साथ ले जाएं जो भक्तों के बच्चे हों, उनसे मिलाने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हमें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके बाद, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत निम्न अवस्था में हैं। ना तो खुद के ऊपर आप दया दिखलाइए और ना ही अन्यों से दया की कामना कीजिए कि अरे हम तो ऐसी अवस्था में हैं अब क्या होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, ना अपने ऊपर दया दिखलाइए ना दूसरों से दया की कामना कीजिए। ये सोचिए कि भगवान ने जो मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरे अंदर तीव्रता नहीं आती भक्ति करने की। धन्यवाद दीजिए अपने आप को भी, भगवान को भी, और उन सारे घर वालों को भी कि अगर इनका विरोध नहीं होता तो शायद मेरे अंदर तीव्रता नहीं आते, मैं बहुत आराम से भक्ति करने लगता या बहुत भक्ति को सस्ता ले लेता, लेकिन इनके कारण मेरे लिए ये हुआ है। तो इसलिए कोई कारण नहीं है दया का, और अंततः भगवान से तीव्रता से प्रार्थना कीजिए। जब भगवान के समक्ष हों, भगवान की सेवा करें, जप करें, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आपने जिस स्थिति में रखा है निश्चित मेरे लिए अच्छी है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं मेरे परिवार के, इनको भी आप भक्ति प्रदान कीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए, ठीक है। और एक प्रश्न है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करो, बस बस। सोशल मीडिया से आपने बच्चों या बच्चों को बचाने का और उनके मनोरंजन के लिए कुछ बताएं, कैसे बचा सकते हैं? टीवी भी नहीं है, फिर भी उनका आकर्षण रहता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे अन्य स्थानों पर जाकर देखते हैं कि वो लोग टीवी देख रहे हैं, उनके जो घर में बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और हमें हमारे माता पिता नहीं दे रहे हैं, तो फिर बच्चों को लगता है वो रोते हैं या कुछ मांगते हैं। पहली चीज़, बच्चों को संभालने के लिए व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए सहिष्णुता होनी चाहिए। सहनशीलता नहीं होती है, धैर्य नहीं होता है, इसलिए हम बच्चों की बात को मान लेते हैं, ठीक है लो टीवी, बैठो चुप रहो, बस तंग मत करो। नहीं, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो कैसे बच्चों को हम इस सबसे दूर रख सकते हैं? बच्चों को हम इस सबसे दूर रख सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों में एंगेजमेंट देकर। ऐसे कई भक्त हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके घरों में बच्चों को ये टीवी मूवीज़ का कोई शौक नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह का वातावरण दिया। माताओं का कर्तव्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दें बच्चे को। अगर उनके पास समय नहीं है बच्चे के लिए, पिता के पास समय नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? टीवी के पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहानियाँ सुनाना, बच्चे के साथ खेलना, क्योंकि बच्चा ये सब चीज़ें चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो कुछ सुनना चाहता है, तो वो सब चीज़ें माँ बाप करें, लेकिन इस भावना में कि हर चीज़ में, जैसे खेलें भी, अभी हमने कुछ खेल बताए जो कृष्ण करते हैं, तो खेलते खेलते भी उनको बताएं कि पता है कृष्ण ऐसे खेलते थे, चलो हम लोग भी खेलेंगे। तो क्योंकि माता पिता समय नहीं देते हैं, खेलते नहीं बच्चों के साथ, उनको पूरा समय दे, क्योंकि माता पिता को बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया में उनको जाना है, फेसबुक पर कई घंटे बिताने हैं, तो कहाँ से माता पिता समय देंगे? तो अगर वो समय दें बच्चों को पूरा समय, ये जान लीजिए कि माँ और पिता के समय पर सबसे पहला अधिकार बच्चे का है, विशेष करके माँ के समय पर। तो अगर वो समय हम बच्चों को देते हैं, बच्चा प्रारंभ से बहुत अप्रिशिएट करता है, आगे चलकर जब हम प्रयास करते हैं तब बिगड़ जाता है, तब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास फिर भी करना चाहिए। तो इस तरह हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं, और साथ साथ उनको उसके बुरे प्रभावों के विषय में भी बता सकते हैं। हमें ध्यान है कि एक भक्त ने हमें बताया था कि उनकी बहुत छोटी बच्ची थी, वो कैसे प्रचार करती थी स्कूल में, क्योंकि उसको इतना अच्छा सिखाया गया था, वो स्कूल जाती थी तो जब अपने मित्रों के साथ बैठकर, अन्य सहेलियों के साथ बैठकर कुछ खाती थी, भोजन वगैरह वो लोग खोलते थे अपना डब्बा जो लाए होते थे टिफ़िन बॉक्स, तो अगर किसी के अंडा होता था उसमें, तो वो लड़की कहती थी कल से अगर अंडा लेकर आओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तो वो बच्चा जाके घर में कहता था अंडा नहीं देना कल से, मेरी जो फ्रेंड है वो साथ में नहीं बैठेगी, मेरे अंडा नहीं लेके जाऊंगी। तो देखिए, बच्चे को हमने कितना अच्छा समझाया कि ये अंडा खाना, ये मांस खाना गलत है, कि वो अन्यों को देखकर भी प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि उनको भी रोकने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, हम समय उतना दें, प्रशिक्षण ऐसा दें, और खुद भी पालन करें। ऐसा नहीं है कि हम उनको सिखाएं, बच्चों को सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, ठीक है पढ़ाई करो मैं जरा सिगरेट पी कर आता हूँ, तो बच्चे कुछ सीखने वाले नहीं हैं। हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको हमें पालन भी करना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे कोई प्रश्न है? Can we read Bhagavad Gita sitting anywhere, or do we need to make specific sitting arrangements to read it? For example, can we read scripture on the bed before sleeping? Well, we can read Bhagavad Gita anywhere, but it is very good that if you read these scriptures in a proper place, with a proper environment, with a proper consciousness, it helps. Because if you start respecting the scriptures, not just don't take them as an ordinary books, but they are scriptures, so respect them. When you respect them, then the scriptures reveal the knowledge to you. When you take them as an ordinary books, novels, which you can lie down and read it, then obviously the revelation will be less. Nonetheless, there is no harm if you read books like this all the time. If you have a habit of lying down and sleeping and reading, no problem, read it. So I said it is good if you be in one place, properly sit, respect and do. But even if you don't, if you lie down and read, it is very good, because most important thing is to read. So that is okay, you can do that. ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसके नीचे नहीं है ना, बस मैं तो इस पे दे। ठीक है, और कोई प्रश्न दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हैं कि आप सब इतने समय से पूरे लॉकडाउन में आप इसको सुन रहे हैं। आज 13 तारीख है, राइट? हाँ, तो कल का एक दिन और है आप लोगों के लिए। ये कथा जारी रहेगी, कल वर्णन करेंगे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वृंदावन में, और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर अध्याय हैं। अगर सरकार की कृपा रही और ये लॉकडाउन बढ़ा, तो हमारी भागवतम भी चालू रहेगी, हम लोग भी भागवत कथा को करते रहेंगे। और अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया और आप सबको ऑफिस जाना हुआ, तो फिर आपको भागवत की जगह ऑफिस कथा निश्चित मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।